अनुभव भीनी स्पष्ट छे, तल स्पर्शी तुज वाण, वचनामृत ना पान मां डोल्यू आँखों ये हिंदुस्तान रे, मंगल द्वार खुला रे।
ओम परमात्मने नमः।
वाहिन श्री के वचनामृत क्रमांक एक। हे जीव, तुझे कहीं न रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। आत्मा में रुचे ऐसा है, आत्मा में आनंद भरा है, वहां अवश्य रुचेगा। जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है, परंतु एक आत्मा में अवश्य रुचे ऐसा है, इसलिए तू आत्मा में रुचि लगा। क्रमांक दो। अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ और जिसे आत्मा की सच्ची लगन लगी, उसकी आत्मलगन ही उसे मार्ग कर देगी। आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा की लगन लगनी चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए। आत्मा को ध्येय रूप रखकर दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए। मेरा हित कैसे हो, मैं आत्मा को कैसे जानूं, इस प्रकार लगन बढ़ाकर प्रयत्न करे तो अवश्य मार्ग हाथ लगे। क्रमांक तीन। ज्ञानी की परिणति सहज होती है। हर एक प्रसंग में वेद ज्ञान को याद करके उसे गोखना नहीं पड़ता, परंतु उनके तो ऐसा सहज परिणमन ही हो जाता है। आत्मा में धारावाही परिणमन बढ़ता ही रहता है। क्रमांक चार। ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। ज्ञान रहित वैराग्य वह सचमुच वैराग्य नहीं है, किंतु रुंधा हुआ कषाय है। परंतु ज्ञान न होने से जीव कषाय को पहचान नहीं पाता। ज्ञान स्वयं मार्ग को जानता है और वैराग्य है वह ज्ञान को कहीं फंसने नहीं देता, किंतु सबसे निस्पृह एवं स्व की मौज में ज्ञान को टिका रखता है। ज्ञान सहित जीवन नियम से वैराग्यमय ही होता है। क्रमांक पांच। अहो, इस अशरण संसार में जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। आत्मा की सिद्धि न सधे तब तक जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। ऐसे अशरण संसार में देव गुरु धर्म का ही शरण है। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए चैतन्य शरण को लक्ष्यगत करके उसके दृढ़ संस्कार आत्मा में जम जाए, यही जीवन में करने योग्य है। क्रमांक छह। स्वभाव की बात सुनते ही सीधी हृदय पर चोट लग जाए। स्वभाव शब्द सुनते ही शरीर को चीरता हुआ हृदय में उतर जाए, रोम रोम उल्लासित हो जाए। इतना हृदय में हो और स्वभाव को प्राप्त किए बिना चैन ना पड़े, सुख ना लगे, उसे लेकर ही छोड़े। यथार्थ भूमिका में ऐसा होता है। क्रमांक सात। जगत में जैसे कहते हैं कि कदम कदम पर पैसे की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आत्मा में पग पग पर अर्थात पर्याय पर्याय में पुरुषार्थ ही आवश्यक है। पुरुषार्थ के बिना एक भी पर्याय प्रकट नहीं होती, अर्थात रुचि से लेकर ठेठ केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ ही आवश्यक है। क्रमांक आठ। आजकल पूज्य गुरुदेव की बात ग्रहण करने के लिए अनेक जीव तैयार हो गए हैं। गुरुदेव को वाणी का योग प्रबल है, श्रुत की धारा ऐसी है कि लोगों को प्रभावित करती है और सुनते ही रहे ऐसा लगता है। गुरुदेव ने मुक्ति का मार्ग दर्शाया और स्पष्ट किया है, उन्हें श्रुत की लब्धि है। क्रमांक 9, पुरुषार्थ करने की युक्ति सूझ जाए तो मार्ग की उलझन टल जाए, फिर युक्ति से कमाए। पैसा पैसे को खींचता है, धन कमाए तो ढेर हो जाए। तदनुसार आत्मा में पुरुषार्थ करने की युक्ति आ गई तो कभी तो अंतर में ढेर के ढेर लग जाते हैं और कभी सहज जैसा हो वैसा रहता है। क्रमांक 10, हम सबको सिद्ध स्वरूप ही देखते हैं, हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं, हम किन्हीं को राग द्वेष वाले देखते ही नहीं। वे अपने को भले ही चाहे जैसा मानते हो, परंतु जिसे चैतन्य आत्मा प्रकाशित हुआ उसे सब चैतन्यमय ही भासित होता है। क्रमांक 11, मुमुक्षुओं तथा ज्ञानियों को अपवाद मार्ग का या उत्सर्ग मार्ग का आग्रह नहीं होता, परंतु जिससे अपने परिणाम में आगे बढ़ा जा सके उस मार्ग को ग्रहण करते हैं। किंतु यदि एकांत उत्सर्ग या एकांत अपवाद की हट करे तो उसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप की ही खबर नहीं है। क्रमांक 12, जिसे द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई उसकी दृष्टि अब चैतन्य के तल पर ही लगी है, उसमें परिणति एकमेक हो गई है। चैतन्य तल में ही सहज दृष्टि है, स्वानुभूति के काल में या बाहर उपयोग हो तब भी तल पर से दृष्टि नहीं हटती, दृष्टि बाहर जाती ही नहीं। ज्ञानी चैतन्य के पाताल में पहुंच गए हैं, गहरी गहरी गुफा में बहुत गहराई तक पहुंच गए हैं, साधना की सहज दशा साधी हुई है। क्रमांक 13, मैं ज्ञायक और यह पर बाकी सब जानने के प्रकार हैं। मैं ज्ञायक हूँ बाकी सब पर, ऐसी एक धारा प्रवाहित हो तो उसमें सब आ जाता है, परंतु स्वयं गहरा उतरता ही नहीं, करने की ठानता ही नहीं, इसलिए कठिन लगता है। क्रमांक 14, मैं हूँ, इस प्रकार स्वयं से अपने अस्तित्व का जोर आता है, स्वयं अपने को पहचानता है। पहले ऊपर ऊपर से अस्तित्व का जोर आता है, फिर अस्तित्व का गहराई से जोर आता है, वह विकल्प रूप होता है, परंतु भावना जोरदार होने से सहज रूप से जोर आता है। भावना की उग्रता हो तो सच्चा आने का अवकाश है। क्रमांक 15, तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि जो कि जड़ है उसे भी कैसे उपमा दी है। अमृतवाणी की मिठास देखकर द्राक्षी शर्माकर वनवास में चली गई और इक्षु अभिमान छोड़कर कोल्हू में पिल गया। ऐसी तो जिनेन्द्रवाणी की महिमा गाई है, फिर जिनेन्द्र देव के चैतन्य की महिमा का तो क्या कहना। क्रमांक 16, ज्ञान वैराग्य रूपी पानी अंतर में सींचने से अमृत मिलेगा, तेरे सुख का फव्वारा छुटेगा, राग सींचने से दुख मिलेगा, इसलिए ज्ञान वैराग्य रूपी जल का सिंचन करके मुक्ति सुख रूपी अमृत प्राप्त कर। क्रमांक 17, जैसे वृक्ष का मूल पकड़ने से सब हाथ आता है, वैसे ज्ञायक भाव पकड़ने से सब हाथ आएगा। शुभ परिणाम करने से कुछ हाथ नहीं आएगा। यदि मूल स्वभाव को पकड़ा होगा तो चाहे जो प्रसंग आए उस समय शांति समाधान रहेगा, ज्ञाता दृष्टा रूप से रहा जा सकेगा। क्रमांक 18, दृष्टि द्रव्य पर रखना है। विकल्प आए परंतु दृष्टि एक द्रव्य पर है। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती है परंतु डोर हाथ में होती है, उसी प्रकार चैतन्य हूँ यह डोर हाथ में रखना। विकल्प आए परंतु चैतन्य तत्व सो मैं हूँ, ऐसा बारंबार अभ्यास करने से दृढ़ता होती है। क्रमांक 19, ज्ञानी के अभिप्राय में राग है, वह जहर है, काला सांप है। अभी आसक्ति के कारण ज्ञानी थोड़े बाहर खड़े हैं। राग है परंतु अभिप्राय में काला सांप लगता है। ज्ञानी विभाव के बीच खड़े होने पर भी विभाव से पृथक है, न्यारे हैं। क्रमांक 20, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी पर पदार्थ की लालसा नहीं है, आत्मा ही चाहिए, ऐसी तीव्र उत्सुकता जिसे हो उसे मार्ग मिलता है। अंतर में चैतन्य वृद्धि है, तत्संबंधी विकल्प में भी वह नहीं रुकता। ऐसा निस्पृह हो जाता है कि मुझे अपना अस्तित्व ही चाहिए। ऐसी अंतर में जाने की तीव्र उत्सुकता जागे तो आत्मा प्रकट हो, प्राप्त हो। क्रमांक 21, चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना अर्थात राग द्वेष में से नहीं उदित हुई भावना ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलती ही है। यदि नहीं फले तो जगत को 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े अथवा तो इस द्रव्य का नाश हो जाए, परंतु ऐसा होता ही नहीं। चैतन्य के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। यह अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है। क्रमांक 22, गुरुदेव को मानो तीर्थंकर जैसा उदय वर्तता है। वाणी का प्रभाव ऐसा है कि हजारों जीव समझ जाते हैं। तीर्थंकर की वाणी जैसा योग है, वाणी जोरदार है, चाहे जितनी बार सुनने पर भी अरुचि नहीं आती। स्वयं इतनी सरसता से बोलते हैं कि जिससे सुनने वाले का रस भी जमा रहता है। रस भरपूर वाणी है। क्रमांक 23, ऊपर ऊपर के वांछन विचार आदि से कुछ नहीं होता, हृदय से भावना उठे तो मार्ग सरल होता है। अंतस्थल में से गायक की खूब महिमा आनी चाहिए। क्रमांक 24, आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए, विचार मनन करना चाहिए, यही आत्मार्थी की खुराक है। क्रमांक 25, प्रथम भूमिका में शास्त्र श्रवण पठन मनन आदि सब होता है, परंतु अंतर में उस शुभ भाव से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। इस कार्य के साथ ही ऐसा खटका रहना चाहिए कि यह सब है किंतु मार्ग तो कोई अलग ही है। शुभाशुभ भाव से रहित मार्ग भीतर है, ऐसा खटका तो साथ ही लगा रहना चाहिए। क्रमांक 26, भीतर आत्मदेव विराजमान है, उसकी संभाल कर अब अंतर में जा और तृप्त हो। अनंत गुण स्वरूप आत्मा को देख, उसकी संभाल कर, वितरागी आनंद से भरपूर स्वभाव में क्रीड़ा कर, उस आनंद रूप सरोवर में केली कर, उसमें रमण कर। क्रमांक 27, ऐसे काल में परम पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मा प्राप्त किया, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव एक अचंभा है। इस काल दुष्कर में दुष्कर प्राप्त किया, स्वयं अंतर से मार्ग प्राप्त किया और दूसरों को मार्ग बतलाया। उनकी महिमा आज तो गाई जा रही है, परंतु हजारों वर्ष तक भी गाई जाएगी। क्रमांक 28, भविष्य का चित्रण कैसा करना है वह तेरे हाथ की बात है। इसलिए कहा है कि बंद समय जीव चेतोरे, उदय समय क्या चिंत। क्रमांक 29, ज्ञान को धीर गंभीर करके सूक्ष्मता से भीतर देख तो आत्मा पकड़ में आ सकता है। एक बार विकल्प का जाल तोड़कर भीतर से अलग हो जा, फिर जाल चिपकेगा नहीं। क्रमांक 30, जब बीज बोते हैं तब प्रकट रूप से कुछ नहीं दिखता, तथापि विश्वास है कि इस बीज में से वृक्ष उगेगा, उसमें से डाले पत्ते फलादि आएंगे, पश्चात उसका विचार नहीं आता। उसी प्रकार मूल शक्ति रूप द्रव्य को यथार्थ विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए विश्वास बिना क्या प्रकट होगा ऐसा लगता है, परंतु द्रव्य स्वभाव का विश्वास करने से निर्मलता प्रकट होने लगती है। क्रमांक 31, सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग्य की ऐसी शक्ति प्रकट हुई है कि गृहस्थाश्रम में होने पर भी, सभी कार्यों में स्थित होने पर भी लेप नहीं लगता, निर्लेप रहते हैं। ज्ञान धारा एवं उदय धारा दोनों भिन्न परिणमती है, अल्प अस्थिरता है, वह अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से होती है, उसकी भी ज्ञाता रहते हैं। क्रमांक 32, सम्यक दृष्टि को आत्मा के सिवा बाहर कहीं अच्छा नहीं लगता, जगत की कोई वस्तु सुंदर नहीं लगती। जिसे चैतन्य की महिमा एवं रस लगा है, उसको बाह्य विषयों का रस टूट गया है, कोई पदार्थ सुंदर या अच्छा नहीं लगता। अनादि अभ्यास के कारण, अस्थिरता के कारण अंदर स्वरूप में नहीं रहा जा सकता, इसलिए उपयोग बाहर आता है, परंतु रस के बिना सब निसार छिलकों के समान रस कस शून्य हो, ऐसे भाव से बाहर खड़े हैं। क्रमांक 33, जिसे लगी है उसी को लगी है, परंतु अधिक खेद नहीं करना। वस्तु परिणमनशील है, कुटस्थ नहीं है, शुभाशुभ परिणाम तो होंगे, उन्हें छोड़ने जाएगा तो शून्य अथवा शुष्क हो जाएगा, इसलिए एकदम जल्दबाजी नहीं करना। मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्यों में भी लगता है, साथ ही साथ अंदर से गहराई में खटका लगा ही रहता है, संतोष नहीं होता। अभी मुझे जो करना है वह बाकी रह जाता है, ऐसा गहरा खटका निरंतर लगा ही रहता है, इसलिए बाहर कहीं उसे संतोष नहीं होता और अंदर ज्ञायक वस्तु हाथ ही नहीं आती। इसलिए उलझन तो होती है, परंतु इधर उधर न जाकर वह उलझन में से मार्ग ढूंढ निकालता है। क्रमांक 34, मुमुक्षु को प्रथम भूमिका में थोड़ी उलझन भी होती है, परंतु वह ऐसा नहीं उलझता कि जिससे मुड़ता हो जाए। उसे सुख का वेदन चाहिए है, वह मिलता नहीं और बाहर रहना पोसाता नहीं है, इसलिए उलझन होती है। परंतु उलझन में से वह मार्ग ढूंढ लेता है। जितना पुरुषार्थ उठाए उतना वीर्य अंदर काम करता है। आत्मार्थी हठ नहीं करता कि मुझे झटपट करना है। स्वभाव में हठ काम नहीं आती। मार्ग सहज है, व्यर्थ की जल्दबाजी से प्राप्त नहीं होता। क्रमांक 35। अनंत काल से जीव को अशुभ भाव की आदत पड़ गई है, इसलिए उसे अशुभ भाव सहज है और शुभ को बारंबार करने से शुभ भाव भी सहज हो जाता है। परंतु अपना स्वभाव जो कि सचमुच सहज है, उसका ख्याल जीव को नहीं आता, खबर नहीं पड़ती। उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव पकड़ना चाहिए। क्रमांक 36। जो प्रथम उपयोग को पलटना चाहता है परंतु अंतरंग रुचि को नहीं पलटता, उसे मार्ग का ख्याल नहीं है। प्रथम रुचि को पलटे तो उपयोग सहज ही पलट जाएगा। मार्ग की यथार्थ विधि का यह क्रम है। क्रमांक 37। मैं अबद्ध हूँ, ज्ञायक हूँ, यह विकल्प भी दुखरूप लगते हैं। शांति नहीं मिलती, विकल्प मात्र में दुख ही दुख भासता है। तब अपूर्व पुरुषार्थ उठाकर वस्तु स्वभाव में लीन होने पर आत्मार्थी जीव को सब विकल्प छूट जाते हैं और आनंद का वेदन होता है। क्रमांक 38। आत्मा को प्राप्त करने का जिसे दृढ़ निश्चय हुआ है, उसे प्रतिकूल संयोगों में भी तीव्र एवं कठिन पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। सच्चा मुमुक्षु सद्गुरु के गंभीर तथा मूल वस्तु स्वरूप समझ में आए ऐसे रहस्यों से भरपूर वाक्यों का खूब गहरा मंथन करके मूल मार्ग को ढूंढ निकालता है। क्रमांक 39। सहज दशा को विकल्प करके नहीं बनाए रखना पड़ता। यदि विकल्प करके बनाए रखना पड़े तो वह सहज दशा ही नहीं है, तथा प्रकट हुई दशा को बनाए रखने का कोई अलग पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि बढ़ने का पुरुषार्थ करता है जिससे वह दशा तो सहज ही बनी रहती है। क्रमांक 40। साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते हैं, परंतु साधक उन्हें छोड़ता जाता है, साध्य का लक्ष्य नहीं चूकता। जैसे मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर जाता है, तब बीच में अन्य अन्य नगर आए उन्हें छोड़ता जाता है, वहां रुकता नहीं है, जहां जाना है वहीं का लक्ष्य रहता है। क्रमांक 41। सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है, मार्ग न मिले ऐसा नहीं बनता। जितना कारण दे उतना कार्य होता ही है। अंदर वेदन सहित भावना हो तो मार्ग ढूंढे। क्रमांक 42। यथार्थ रुचि सहित शुभ भाव वैराग्य एवं उपशम रस से सराबोर होते हैं, और यथार्थ रुचि बिना वह के वही शुभ भाव रूखे एवं चंचलता युक्त होते हैं। क्रमांक 43। जिस प्रकार कोई बालक अपनी माता से बिछुड़ गया हो, उससे पूछे कि तेरा नाम क्या, तो कहता है मेरी माँ। तेरा गांव कौन? तो कहता है मेरी माँ। तेरे माता पिता कौन है? तो कहता है मेरी माँ। उसी प्रकार जिसे आत्मा की सच्ची रुचि से ज्ञायक स्वभाव प्राप्त करना है, उसे हर एक प्रसंग में ज्ञायक स्वभाव ऐसी लगन बनी ही रहती है। उसी की निरंतर रुचि एवं भावना रहती है। क्रमांक 44। रुचि में सचमुच अपने को आवश्यकता लगे तो वस्तु की प्राप्ति हुए बिना रहती ही नहीं। उसे 2400 घंटे एक ही चिंतन मंथन खटका बना रहता है। जिस प्रकार किसी को माँ का प्रेम हो तो उसे माँ की याद उसका खटका निरंतर बना ही रहता है, उसी प्रकार जिसे आत्मा का प्रेम हो वह भले ही शुभ में उल्लासपूर्वक भाग लेता हो तथापि अंतर में खटका तो आत्मा का ही रहता है। माँ के प्रेम वाला भले ही कुटुंब परिवार के समूह में बैठा हो आनंद करता हो, परंतु मन तो माँ में ही लगा रहता है। अरे मेरी माँ, मेरी माँ। उसी प्रकार आत्मा का खटका रहना चाहिए। चाहे जिस प्रसंग में मेरा आत्मा यही खटका और रुचि रहना चाहिए। ऐसा खटका बना रहे तो आत्मा माँ मिले बिना नहीं रह सकती। क्रमांक 45। अंतर का तल खोजकर आत्मा को पहचान। शुभ परिणाम धारणा आदि का थोड़ा पुरुषार्थ करके मैंने बहुत किया है ऐसा मानकर जीव आगे बढ़ने के बदले अटक जाता है। अज्ञानी को जरा कुछ आ जाए, धारणा से याद रह जाए, वहां उसे अभिमान हो जाता है, क्योंकि वस्तु के अगाध स्वरूप का उसे ख्याल ही नहीं है। इसलिए वह बुद्धि के विकास आदि में संतुष्ट होकर अटक जाता है। ज्ञानी को पूर्णता का लक्ष्य होने से वह अंश में नहीं अटकता। पूर्ण पर्याय प्रकट हो तो भी स्वभाव था सो प्रकट हुआ, इसमें नया क्या है? इसलिए ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। क्रमांक 46। जीवन आत्मामय ही कर लेना चाहिए। भले ही उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो, परंतु प्रतीति में ऐसा ही होता है कि यह कार्य करने से ही लाभ है, मुझे यही करना है, वह वर्तमान पात्र है। क्रमांक 47। त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य कभी बंधा नहीं है। मुक्त है या बंधा है वह व्यवहार नय से है, वह पर्याय है। जैसे मकड़ी अपनी लार में बंधी है, वह छूटना चाहे तो छूट सकती है। जैसे घर में रहने वाला मनुष्य अनेक कार्यों में उपाधियों में जंजाल में फंसा है परंतु मनुष्य रूप से छूटा है, वैसे ही जीव विभाव के जाल में बंधा है, फंसा है, परंतु प्रयत्न करे तो स्वयं मुक्त ही है ऐसा ज्ञात होता है। चैतन्य पदार्थ तो मुक्त ही है। चैतन्य तो ज्ञान आनंद की मूर्ति ज्ञायक मूर्ति है, परंतु स्वयं अपने को भूल गया है, विभाव का जाल बिछा है, उसमें फंस गया है, परंतु प्रयत्न करे तो मुक्त ही है, द्रव्य बंधा नहीं है। क्रमांक 48। विकल्प में पूरा पूरा दुख लगना चाहिए। विकल्प में किंचित भी शांति एवं सुख नहीं है ऐसा जीव को अंदर से लगना चाहिए। एक विकल्प में दुख लगता है और दूसरे मंद विकल्प में शांति का आभास होता है। परंतु विकल्प मात्र में तीव्र दुख लगे तो अंदर मार्ग मिले बिना न रहे। क्रमांक 49, सारे दिन में आत्मार्थ को पोषण मिले ऐसे परिणाम कितने हैं और अन्य परिणाम कितने हैं, वह जांचकर पुरुषार्थ की ओर झुकना चिंतवन मुख्य रूप से करना चाहिए। कषाय के वेग में बहने से अटकना, गुणग्राही बनना। क्रमांक 50, तू सत की गहरी जिज्ञासा कर, जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। तेरी मति सरल एवं सुलटी होकर आत्मा में परिणमित हो जाएगी। सत के संस्कार गहरे डाले होंगे तो अंत में अन्य गति में भी सत प्रकट होगा, इसलिए सत के गहरे संस्कार डाल।